ಅವಗಾಢ ಭೀಷಣ ತಾಂ ಅಪಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಂ ಭಗವತ ಸತರ್ಜ್ಯಂ ನ ಸಸ್ಮಾರ.
मैं स्वयं इस श्लोकों को आवृत्ति करूंगा. उसके बाद जब भी कोई आवृत्ति कर सकते तो अच्छा है, क्योंकि इसकी कोई मीटर नहीं है श्लोकों का.
तथेतम अविरतम पुष्प परिचर्जया भगवती प्रवर्ध्यमानान राग भरद्रुत हृदय ಶೈಥಿಲ್ಯಂ ಪ್ರಹರ್ಷ ವೇಗೇನ ಆತ್ಮನಿ ಉದ್ಭಿದ್ಯಮಾನೋ ರೋಮ ಪುಲಕ ಕುಲಕಃ ಔತ್ಕಂಠ ಪ್ರವೃತ್ತ ಪ್ರಣಯ ಬಾಷ್ಪ ನಿರುದ್ಧಾವಲೋಕ ನಯನಂ ಏವಂ ನಿಜ ರಮಣಾರುಣ ಚರಣಾರವಿಂದಾನ ಧ್ಯಾನ ಪರಿಚಿತ ಭಕ್ತಿ ಜೋಗೇನ ಪರಿಪ್ಲುತಂ ಪರಮಹಾದ ಗಂಭೀರ ಹೃದಯ ಭಾದವಗಾಢ ಭೀಷಣ ಸ್ತಮಾತಿ ಕ್ರಿಯಮಾಣಂ ಭಗವತ ಸತರ್ಜ್ಯಂ ನ ಸಸ್ಮಾರ.
ಪಸಿನ ಪಡ ಸಕ್ತೆ कोई आवृत्ति बताया तो बहुत सुंदर लगता है. एनीवे हम लोग शब्दार्थ और अनुवाद दोहराएंगे. तया इसके द्वारा इत्थं इस प्रकार अविरत निरंतर पुरुष परमेश्वर की परिचर्या सेवा द्वारा भगवती श्री भगवान ने प्रवर्धमान निरंतर बढ़ती हुई अनुराग आसक्ति का भर भार से द्रुत द्रवित हृदय हृदय शैथिल्य शीतलता प्रहर्ष वेगेन दिव्या हर्ष की वेग से दिव्या हर्ष की वेग से आत्मनि अपने शरीर में उद्विद्यमान रोम फुलक कुलक रोमांच रोम का खड़ा होना औत्कंठ उत्कंठ के कारण प्रवृत्त उत्पन्न प्रणय बाष्प निरुद्ध अवलोकनयन प्रेमाश्रु प्रकट होने से दृष्टि में अवरोध एवं इस प्रकार निज रमण अरुण चरणारविंद ನಿಜ ರಮಣ ಅರುಣ ಚರಣಾರವಿಂದ ಈಶ್ವರ ಕೆ ಲಾಲ್ ಲಾಲ್ ಚರಣ ಕಮಲ್ ಪರ್ ಅನುಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಕರ್ನೆ ಸೆ ಪರಿಚಿತ ಬಡಾ ಹುವಾ ಭಕ್ತಿ ಜೋಗೇನ ಭಕ್ತಿ ಕಿ ಕಾರಣ ಪರಿಪ್ಲುತ ಸರ್ವತ್ರ ಫೇಲ್ ಕರ್ ಸರ್ವತ್ರ ಫೇಲ್ ಕರ್ ಪರಮ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆಹ್ಲಾದ ಆನಂದ ಕಾ ಗಂಭೀರ ಅತ್ಯಂತ ಗಹರಾ ಹೃದಯ ಹೃದಯ
हृदय रूपी सरोवर अवगाढ़ा डूबा हुआ भीषण जिसकी बुद्धि ताम वह अति यद्यापि क्रियमाणम करते हुए भगवत श्री भगवान का सपर्ज्यम आराधना ना नहीं सस्मार स्मरण रहा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। इस प्रकार गौरवशाली भक्त महाराज भरत ईश्वर की भक्ति में, सब लोग दोहराइए, ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे रहे। स्वाभाविक है कि वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया और अंततः उनका हृदय द्रवित हो उठा। फलतः धीरे धीरे समस्त विधि विधान के प्रति उनकी आसक्ति जाती रही। उन्हें रोमांच होने लगा और आह्लाद के सभी के शारीरिक लक्षण व भाव प्रकट होने लगे। इस प्रकार से वे निरंतर ईश्वर की अरुण चरणार विंद पर ध्यान लगाए रहते रहे। उस समय उनका सरोवर के सदृश, उनके सरोवर के सदृश हृदय आनंद जल से पूरित हो गया। जब उनका मन इस सरोवर में निमग्न हो गया तो वे नियम पूर्वक संपन्न की जाने वाली भगवत पूजा भी भूल गए। तात्पर्य, जब कोई श्री कृष्ण के प्रेम में विभर हो उठता है तो शरीर की आठ दिव्य आनंदमय लक्षण भाव प्रकट होते हैं। ये सिद्धि के लक्षण है। क्योंकि महाराज भरत निरंतर भक्ति में लीन रहते थे इसलिए यह हर्षातिरेक के लक्षण में लक्षण उनमें प्रकट हुए। क्योंकि महाराज भरत निरंतर भक्ति में लीन रहते थे इसलिए हर्षातिरेक के लक्षण उनमें प्रकट हुए। ओम ज्ञान तमरांधस्य ज्ञानांजन शलकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरु श्रीजुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांस श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं नित्वं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखानितांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। नमो वं विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्यदेशतारिणे। जं प्रभजन्त मनुपेत्यमपेत्य कृत्यं दैपायन विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतस्मि। हरे कृष्ण। तो ये जो श्रीमद् भागवतम के जो पंचमा स्कंद में हम भरत महाराज के चरित्र को अभी सुन रहे हैं कि राजा भरत किस प्रकार अपने समृद्धिशाली राज्य को त्याग कर भगवान हरि की आराधना करने के लिए पुलह आश्रम में गंडक नदी के आश्रय ग्रहण किए और उस गंडक नदी जो भगवान की चरण दुग को हमेशा ही धारण करता है जिसमें सुंदर शालग्राम शिलाएं होती हैं, उस गंडक नदी सभी तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ है और ईश्वर आराधना करने के लिए सर्वोत्तम स्थान है। भरत महाराज उस स्थान पर भगवान हरि की एकांत आराधना की। किस प्रकार? तस्मिन् बाबं कीलस एकः पुलकः आश्रम उपवने विविध कुसुमः किसलयः तुलसीकां भुवि। उन्होंने इस पुलह आश्रम के पास जो सुंदर उद्यान जो पुष्प और तुलसी दल से भरी हुई थी वो सुंदर सुंदर पुष्प को और तुलसी दल को चयन करके और उस पवित्र नदी के जल को एकत्र करके भरत महाराज भगवान हरि की आराधना करने लगे। और जब ठाकुर जी को उन्होंने उपासना करते थे उनको भोग लगाने के लिए क्या क्या उपचार को एकत्र करते थे? कंद मूल फल उपहारस्य समीहमान भगवत आराधनाम विविक्त। तो हमारी भी विग्रह पूजा में यही विधि को हम अपनाते हैं कि भगवान को श्रृंगार भी करते हैं और भगवान को हम भोग अर्पित करते हैं। तो भरत महाराज इस प्रकार जब भगवान की भक्ति जोग में तल्लीन हो गए तो उनकी समस्त प्रकार की विषय की आसक्ति तुरंत दूर हो गया। उपरतम विषय अभिलाषम उपभृत्यम उपशमम परानिवृत्तिम अभाव। पूरी तरह से उनके हृदय कलमश से रहित हो गया। तो फिर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होने के कारण उनके शरीर में जो भक्ति की बाह्य लक्षण प्रकट हुआ जिसको भाव कहा जाता है इस भाव के लक्षण को सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित महाराज के सामने वर्णन कर रहे हैं। तथा इत्थम अविरतम पुरुषम परिचर्यया भगवती प्रवर्धमान अनुराग भरद्रुत हृदय शैथिल्य। तो उनकी हृदय रूपी लत सरोवर किसमें भर गया? भगवान की भक्ति रूपी जल से भर गए जिसको कहा जाता है हृदय हलादा। जब ये भक्ति उनकी हृदय रूपी लत में भर गया तो क्या हुआ? जैसे समुद्र में अनेक नदियां मिल जाते हैं तो समुद्र में क्या होता है? लहर आता है जिसको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं
जब भक्ति के उद्रेक होता है, हमारी हृदय अनर्थ से दूर हो जाता है, तो क्या होता है? प्रतिपदम तृण अमृत आश्वत आनंदम अम्बुधि वर्धनम, आनंद रूपी समुद्र उमड़ता है। और ऐसे एकांत के भक्त हर फल फल में इस अमृत को आस्वादन करता है। तो भरत महाराज उसी प्रकार इस अमृत को आस्वादन कर रहे हैं। कैसे? प्रहर्ष वेगेन आत्मनि उद्भिद्यमान रोम फुलक कुलक औत्कंठ्य प्रवृत प्रणय बाष्प निरुद्धावलोकन नयन। अभी जब भाव प्रवृद्ध हुआ तो उनकी शरीर की जो रेंगटा है, रोम है, तो वो खड़े हो गए। रोम फुलक कुलक सारे लोमावली उनकी फुलकित हो गए। औत्कंठ प्रवृत उनके जो कंठ है वो रोक गया, अर्थात भगवान के प्रति जो स्तुति है, जो प्रार्थना है, जो निवेदन है, ये करना बंद हो गया। प्रणयाव बाष्प निरुद्धावलोक नयन और उनकी आंख में इतनी जल भर गया तो भगवान के श्री विग्रह को दर्शन करना वो बाधा पड़ा, वो ठीक से दर्शन नहीं कर पाए। एवं निज रमण अरुणा चरणार बिंदानु ध्यान परिचित भक्ति जोगे ना, ये कैसे ऐसी स्थिति को प्राप्त किए? मैं निज रमण अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण की चरणार बिंद अनुध्यान, जो उनकी लाल लाल जो चरण कमल को ध्यान करने के कारण उनकी इस प्रकार स्थिति प्राप्त हुई, जिसको कहते हैं भक्ति योग। ध्यानावस्थी तदगते न मनसा पश्यंती जो जोगिन जस्यांतन विदुसुरासुरा गण देवाय तस्मै नमः। जिस भक्ति योग के द्वारा जोगी अपने मन को ध्यान में एकाग्र करके जिस प्रभु की सुंदर स्वरूप को दर्शन करता है, उस ध्यान योग के द्वारा अपने हृदय में इस स्वरूप को दर्शन करता है, तो फिर उनकी परिप्लुतम परम आह्लाद, उस समय उनकी आनंद की और वृद्धि होता है, असीम आनंद, जिसको भगवत गीता में भगवान कहते हैं सुखम ऐकांतिकं जत्त बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेतिं जत्रं न चैवायम सुखम अमृत अस्मते। ये आत्यंतिक सुख है। स्तमपि क्रियमाणानं भगवत सेवा परिज्ञान न संस्मार, ऐसे भक्ति के लक्षण प्रकट होने के कारण वो फिर भक्ति की जो विधि विधान है, जो नियम है, उसको वो भूल गए। न संस्मार, तो हम जो भक्ति जो कि अभ्यास करते हैं, इसमें एक होता है साधन भक्ति और दूसरा होता है रागानुग भक्ति। तो कभी कभी जो सहजिया होते हैं, तो सहजपंथी होते हैं, तो कभी कभी भावुक बन जाते हैं, उनकी हृदय में रागानुग भाव उत्पन्न नहीं होता है, परंतु लोगों के सामने सहज सम्मान को इकट्ठा करने के लिए, प्राप्त करने के लिए ऐसे भावुकता प्रदर्शित करते हैं। परंतु जो भाव के लक्षण हैं, वो इस प्रकार जो भक्ति दृढ़ होता है, अनर्थ निवृत्त हो जाता है, निष्ठा आसक्ति, फिर उसके बाद भाव उत्पन्न होता है। इस भाव की पूरी लक्षण को भरत महाराज प्राप्त किए थे। तो एक योगी को किस प्रकार योग अभ्यास करना चाहिए ताकि इस भाव में वो प्रवृद्ध हो सके? जय श्री श्री कर्णिताय की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो भगवान ये भक्ति योग को अभ्यास करने के लिए विधि बतलाते हैं कि जिनको ऐसे भौतिक शरीर प्राप्त हुआ है, साधारणतया इंद्रियां विषय को भोग करने के लिए ललुप्त होते हैं। तो मन उस विषय को भोग करने के लिए विक्षिप्त होता है और दौड़ता है उसका पीछे पीछे। तो भगवान कहते हैं ये मन जहां जहां दौड़ता है उसको खींच करके पकड़ लो। ये बहुत नटखट बालक है, जैसे बच्चे को नहीं संभालते हैं ना, बहुत अनर्थ कर लेता है, घर में सामान भी तोड़ सकता है, कुछ ना कुछ खराब कर सकता है। तो इसलिए ये जो फिकलिंग माइंड है, हाँ, जो दौड़ता हुआ मन है, इसको नियंत्रण करना चाहिए। कैसे? जतो जतो निश्चरति मनश्चल अस्थिरम ततो ततो नियम्येत आत्मनिबम बसम नयेत। कि जहां जहां ये मन दौड़ता है वहां पीछे पीछे दौड़ करके इसको पकड़ो, इसको नियम कंट्रोल में रखो, नहीं तो ये तो सारे बर्तन को फोड़ेगा, माखन को बिखार देगा और बंदर को खिलाएगा। ये ऐसा ही है, ये मन भी ऐसा नटखट बालक है। इसलिए माता जसोदा हमेशा क्या करती है, उस बालक को पकड़ने के लिए दौड़ती है जिसको जोगी प्राप्त करना बहुत कठिन है। जोगिनांग अति दुर्लभम, परंतु जब जोग में इस प्रकार कोई परिपक्व हो जाता है, माता जसोदा की तरह प्रगाढ़ भक्ति को प्राप्त करता है, इसे चंचल मन को भी पकड़ लेता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि सनिश्चयेन जोक्तव्य, इस मन को कंट्रोल करने के लिए निश्चय आत्मिक बुद्धि चाहिए, डिटर्मिनेशन। जिसके मन निश्चित नहीं है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट है जोग करना। असंजतात्मनम जोगम दुष्प्राप्यं इति मे मति, ये दुष्प्राप्य है। तो किनको फिर प्राप्य होगा? भगवान कहते हैं वस्य आत्मनां तु जतताम सक्यम व्याप्तम उपायत, यू एबल टू अचीव मी, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। सक्यम व्याप्तम अवाप्यम, वो सक्यम हो सकता है। तो किस प्रकार संयम करें? तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कहते हैं, गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से विज्ञ होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वही है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों की स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भवनामृत है कहलाती है। इंद्रिय को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। क्या विधि है? सवई मन कृष्ण पदार विंदयो वचनसी वैकुंठ गुणानुवर्णन करौ हरि मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकार च्युत सत्कथा द्वय। जिस प्रकार अम्बरीश महाराज भक्ति योग के सारे अंगों को अपने इंद्रियों के द्वारा ही संपादित किए, ऋषिकेशम ऋषिकेन सेवनम भक्ति उच्यते, इसको वास्तविक योग की परिपूर्णता कहा जाता है, परफेक्शन ऑफ योग। जब हमारा इंद्रिय पूरी तरह से भगवान की सेवा के अलावा और कुछ चिंतन भी ना करे, उनकी सेवा के अलावा और कुछ ना करे, वो है योग की परिपूर्णता, परफेक्शन ऑफ योग। इंद्रियों को पूर्ण बस में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। तो योगी इस प्रकार जब प्रयत्न करता है तो उनकी हृदय की जो कलमश है इस प्रकार दृढ़ता व निश्चयता के द्वारा धुल जाता है। इसलिए भजन जो है वो दृढ़ता से ही उसको पूर्णता प्राप्ति होती है। भजन ते मा दृढ़व्रता सततं कीर्तयन्तो मा जतन्तस्य दृढ़व्रता। जो कीर्तन है वह भगवान के भजन है ये दृढ़ मन से ही होता है। जिसकी दृढ़ मन नहीं है तो संग में रहने की बात फिर मन दृढ़ हो जाता है, क्योंकि संग से ही रंग चढ़ता है, संगात संजायते काम। तो जिस प्रकार हम संग में रहेंगे, गोष्ठी में रहेंगे, तो उसी प्रकार भावना उत्पन्न होगा। तो ये है कृष्ण भावनामृत संग। जिस संग में हमको हर मुहूर्त हर क्षण कृष्ण की संगति प्राप्त होता है, कृष्ण की कथा, कृष्ण की कीर्तन, उनके श्री विग्रह के दर्शन, उनके प्रसाद, उनके भक्तों के दर्शन, ये सब कुछ कृष्णमय बनाने के लिए हैं। इसलिए कृष्ण के जो स्वरूप है भक्त इसको अनुभव करता है। कृष्ण के कैसे स्वरूप है? आनंद स्वरूप है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार योग को अपनाता है तो इसके परिणाम क्या होता है? भगवान कहते हैं प्रशांत मनसं हेनम योगिनं सुख उत्तमम। उसको उत्तम सुख की अनुभव होता है जो तमोगुण से ऊपर है। शराबी व्यक्ति को क्या अनुभव होता है? तमोगुण सुख है, तत नहीं, नहीं उस प्रकार सुख नहीं। रजोगुणी लोगों को धन कमाने और जाने सुख भी अनुभव होता है, तो उस प्रकार सुख नहीं है। उपेति संत रजसम, ये रजोगुण की सुख नहीं है, क्योंकि रजोगुण उसमें संत हो जाता है। उत्तमं सुखम उपेति, क्यों? न वो व्यक्ति समस्त प्रकार की कर्मस से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा भूतम अकर्मस, ब्रह्म की एक स्वरूप है आनंदमय अभ्यास। सुख इसको कहते हैं जिसकी खा मतलब है आकाश। सुख इसमें दो अक्षर है, सु और ख, जिसकी ख का मतलब है आकाश संस्कृत शब्द में। जिसकी आकाश रूपी हृदय, सु का मतलब है सुंदर, अर्थात जिसकी हृदय आकाश निर्मल है उस ब्रह्म सुख को अनुभव कर सकता है। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते, ये भगवान की आराधना करने से, उनके संस्पर्श इंद्रियों के द्वारा होने से, उनकी सेवा इस प्रकार हम करने से हमको अखिल सुख प्राप्त होता है, जिस सुख कभी क्षय नहीं हो सकता है। जंगलब्ध्वा चापरंग लाभम मन्यते नाधिकम तथा जस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। ऐसे सुख एक बार जिसको चस्का लग जाता है, कितनी भी बड़े विपत्ति आ जाए उसमें कभी विचलित नहीं होता है। ये सुख की उसकी चस्का लगता है, आस्वादन मिलता है। लेकिन जिनकी स्पर्श सुख प्राप्त करने के लिए इच्छा है ये कभी सुख को आस्वादन नहीं कर सकता है, क्योंकि वर्ज्य रस है, ये तुच्छ रस को त्याग करना पड़ेगा। लेकिन वर्ज्य रस के आस्वादन होने से अपने आप निकृष्ट रस दूर हो जाता है। रस वर्जम रसप्रासम परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये ब्रह्म सुख क्या है? आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। बहुत सिंपल मेथड प्रभुपाद ने दिए हमको। ब्रह्म के साथ स्पर्श करने के लिए पहला अपने जीवा से उस नाम को स्पर्श करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये पहला सेवा जीवा से शुरू होता है। सेवन मुख्य ही जीवा आदौ स्वयं मेव स्फुरत्यद्य। और कोई दूसरी उपाय नहीं है तो फिर जब हम कल्मश से मुक्त हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मभूत अवस्था, उस समय हमारे संसार की भोग के लिए जो शोक है वो तुरंत दूर हो जाता है। ना सोचति, पहले शोक नहीं होता है। भगवान तो कहते हैं मा सोच, तो कैसे हम शोक नहीं करेंगे? शोक तो मैं हमेशा ही शोक है। धन चल गया, मान चल गया, पत्नी छूट गए, बच्चे चल गए, सब फर्स्ट पोजिशन चल गया, तो सब शोक के कारण है। तो शोक से कब हम मुक्त हो सकते हैं? कब मुक्त हो सकते हैं? जब भगवान की उस आज्ञा को हम पालन करें, माम एकम। जिनकी लक्ष्य केवल भगवान है उनको प्राप्त करना है, उन पर वो डिपेंडेड है, शरणापन्न है। माम एकम शरणं भज, तो फिर शोक से मुक्त हो सकता है। क्योंकि भगवान इस पाप रूपी शोक को दूर करते हैं कि अनर्थ है, ये हृदय की कलमस है। शरीर को तो साफ करने के लिए हम पानी में नहा लेते हैं, साबुन लगा लेते हैं, ऑयल भी छिड़का देते हैं, सेंट पेंट भी लगा लेते हैं, परंतु हृदय के अंदर जो कलमस पड़ा है इसको कैसे साफ कर सकते हैं? भगवान कहते उस पाप को लेके आओ, मेरे पास आओ। अहं त्वं सर्व पापेभ्य मुक्ति स्यामि मा शुच, आप पाप लेके आओ, मैं इसको दूर करता हूं। तो फिर हम भगवान के पास जब जाएंगे तो भक्ति जोग के साथ हम युक्त हो जाते हैं। तो इस प्रसंग में जब भरत महाराज इस भक्ति जोग की अभ्यास से जब अपने हृदय को पूरी तरह से शुद्ध कर लिए, जो भगवान की चरण कमल को नित्य निरंतर ध्यान से इस प्रकार भाव अवस्था को प्राप्त किए, जिसको श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रवर्ध्य मान अनुरागस्य भरेण जब द्रुतम द्रवीभूतम हृदयम जस्मिन। हृदय में अभी आग है, एक काम रूपी अग्नि जल रहा है, तो आर्द्र जब हो जाता है हृदय, जब भीग जाता है पानी में, तो हम देखो दैन्यता उत्पन्न होता है। जब तक सूखा है, आग जलना है, तब दंभ घमंड ये रहता है। जब भक्ति में भीग जाता है हृदय, तो दैन्य आत्मा निवेदनम पुलक अश्रु ये सब उत्पन्न होता है। हृदय तस्मिन शैथिल्यम अनुद्यमानम जस्य आत्मनि देहे उद्विद्यमानम, ये शरीर से उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं कि वो ऐसा है कोई पता नहीं लगा सकता है, पर शरीर से ये भाव भी प्रकट होता है। रोम पुलक कुलम रोमांच बृंदम जस्य, ये भाव को स्वयं भक्ति आचरण करके चैतन्य महाप्रभु प्रदर्शित किए। नयनम गलदाश्रुधारयम बदनम गदगद हृदया गिरा फुलके निश्चितं बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। ये भक्ति एक विज्ञान है। जब हम ज्ञान आहरण करते हैं तो उसकी दो ब्रांचेस होता है, एक क्या होता है थ्योरी, दूसरा है प्रैक्टिकल। थ्योरी की हमको पहले क्लास अटेंड करके सीखना पड़ता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करते हैं स्वयं को जाकर के जो थ्योरी को हम सीखे उसको खुद अप्लाई करना पड़ता है। तो फिर उस विज्ञान को हम प्राप्त होता है। तो भक्ति जो विज्ञान है इसको अनुभव करने के लिए ये अपने जीवन के ऊपर इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर प्रैक्टिकल होगा कि वास्तविक मैं भक्ति में बढ़ रहा हूं कि नहीं, खुद को अनुभव होगा। जैसे हम पानी पीते हैं तो पानी पीने पर हमारा प्यास मिटा कि नहीं, दूसरे कैसे बता सकता है, खुद ही हम बता सकते हैं कि मेरी प्यास मिटा कि नहीं। तो इसी प्रकार जो भक्ति रस को आस्वादन किया तो संसार की आग उसको बुझा कि नहीं, तृष्णा उसको मिटा कि नहीं। भक्ति परेशान भाव विरक्ति अन्यत्र स्यात्, त्रय एक काल, तुष्टि पुष्टि छोद अपसान। उनके भूख भी दूर होता है, खाने पर उनको टेस्टी लगता है और भोजन करने के बाद शरीर में शक्ति उत्पन्न होता है। इसलिए भक्ति योग की जो सेंट्रल पॉइंट है ये क्या है, ध्यान, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। यदि हमारे कोई भी भक्ति के अंग प्रति ध्यान नहीं है, निश्चितता नहीं है, तो मन भटक सकता है। भले ही हम एकांत स्थान में जाकर के अभ्यास कर ले, लेकिन मन पर हम काबू नहीं रखते हैं। जैसे सबरी मुनि, उन्होंने घर द्वार राज्य भी छोड़ दिए, जाकर के जमुना जल के अंदर तपस्या किए, परंतु क्या हुआ, मन के ऊपर काबू नहीं रहा, मछली की संगति को देख करके उनके मन विचलित हो गए। एक नहीं, मानता था कि 50 कन्या से अपने जो जोग शक्ति इकट्ठा किए थे, 50 की 50 कन्या से सबसे वो मैरिज कर लिए। और लड़की भी देखे, यारी ऐसी सुंदर वर हमको कैसे मिल सकता है, जो उनकी जरावस्था को देख करके कोई पसंद नहीं करना चाहता था। लेकिन राजा भी इस प्रकार ट्रीक करके भेज दिया था, देखो हमारा कोई भी लड़की आपको चुन ले तो विवाह कर लो। तो इतनी बड़ी जोगी जो अपने शरीर को 50 रूप में बांट सकते हैं, 50 रूप बना सकते हैं, ये अल्हादीन नहीं है कि अब बना के चीट कर सकते हैं अमेरिका सरकार के साथ, लेकिन ये सचमुच ऐसे स्वरूप बना दिए और सब सुंदर युवक शरीर था। ऐसे जोगी सिर्फ मन के ऊपर अपना लगाम छोड़ दिया, बहुत बड़ा पतन। और इस पतन से बचने के लिए क्या चाहिए, पश्चाताप। फिर उन्होंने पश्चाताप किए, क्या हो गया, मैं सब कुछ छोड़ करके एकांत में आ गया। एक से हम 51 हो गए, 50+1 51 हो गए, और 51 से अभी कितना हो गया, सबसे 100 संतान हो गया। तो कितने ग्रीन कार्ड चाहिए अभी फैमिली मेंटेन करने के लिए, परंतु वो कोई ग्रीन कार्ड नहीं बनाए, वो अपने जोग शक्ति से सबको मेंटेन किए। इतनी सुंदर उद्यान, खाने पीने के लिए सब चीज की व्यवस्था कर दी। हम तो कोई छोटा मोटा जोग करते हैं, गृहस्थ होने के बाद फिर मंदिर से मेंटेनेंस मांगते हैं, परंतु सबरी मुनि कोई मेंटेनेंस नहीं लिया राजा से कि 50 लड़की से शादी किया कुछ तो दो, नहीं किया। इतनी बड़ी जोगी जोग साधना करते करते विचलित हो गया मन, तो हमको कितनी सावधानी रहना चाहिए। इसलिए गुरु और ईश्वर की कृपा है जो इस प्रकार पतन से हमको बचा सकता है। इसलिए नारद जी भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव को यह उपदेश देते हैं, कहते देखो महाराज, आपका तो बहुत बड़ा भाग्य है कि भगवान की आराधना करके आपको ऐसे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि भगवान आपके पुत्र बने हैं। परंतु वही भगवान अलग अलग युग में अलग अलग रूप धारण करते हैं। 11 स्कंद के 5वें अध्याय के 32 श्लोक में तो अलग अलग युग की जो भगवान के अवतार इसके वर्णन करके कहते हैं कि कलयुग में लोग किस प्रकार भगवान हरि के ध्यान करते हैं। कृष्ण वर्णं दिशा कृष्णम संग पंगादि पार्षदम जग्गी संकीर्तना प्राय जजंती ही सुमेधसा। फिर कहते उस विद्वान व्यक्ति भगवान की आराधना भी करते हैं। ये संकीर्तन जग्गी द्वारा कैसे आराधना करते हैं? ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थस्पदम हरि विरंचिनियुतम भूतार्तिहं प्रणत पाल भवद्धिपोतम वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। कहते उनको ध्यान करना चाहिए। ध्येयं सदा परिभवग्न अभीष्ट दोहम, ये संसार की सारी कलमश को मिटा देता है और जो जीव की चाह है इस आनंद की प्राप्ति वो प्राप्त करा देता है। क्यों नहीं, भगवान इतनी कृपालु है, प्रणत पालम प्रणाम करने मात्र से ही वो पालन करने लग जाते हैं। भूत आरती अहम, और जो उनके सेवक बनता है उनकी सारी आरती दुख को मिटा देते हैं। इसलिए बड़े बड़े देवता विरंची ब्रह्मा शिव ये भी अपनी कलमश को दूर करने के लिए उस पाद पद्म को ध्यान करते हैं, वो भी उनके शरण में जाते हैं। हालत खराब हो गया शिव जी के वरदान दे करके, भागना पड़ा। किसको दिए थे वरदान? ब्रुकासुर शकुन के पुत्र। श्री प्रणाम किए, भगवान का कोई टेंशन नहीं, आप चुपचाप रहो मैं देख लेता। तो ये भी इतनी मुसीबत में पड़कर कि वही भगवान के चरण को आश्रय ग्रहण करते हैं, तो फिर हम लोग क्यों ना ग्रहण करें। इसलिए उस महापुरुष का वंदना करते वंदे महापुरुषते चरणारविंदम, बार बार प्रणाम करना चाहिए। जब इस कलमश को हम दूर कर पाते हैं तो भक्ति करने की बात तुरंत इस भाव उत्पन्न होता है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं एक भक्ति कैसे का विज्ञान है। कहते भक्ति के द्वारा हम इस भाव को कैसे प्राप्त करते हैं? कहते जैसे प्राण वायु के साथ अग्नि के संयोग होने से पसीना निकलता है। अब जानते हैं प्राण वायु के साथ गर्मी, अग्नि के संयोग होने से क्या होता है? पसीना छूटता है। प्राण रहने के कारण, प्राण ना रहे तो फिर नहीं आएगा। प्राण वायु के साथ जब मिट्टी के संयोग होता है क्या होता है? आश्चर्य। और जब प्राण वायु के साथ जल की संस्पर्श होता है क्या होता है? अश्रु, आंख में आंसू भरता है। और वहीं प्राण वायु के साथ जब हवा के संयोग होता है तो क्या होता है? कंपन होता है, शरीर कंपता है। और उस प्राण वायु के साथ जब आकाश के संयोग होता है तो क्या होता है? प्रलय, शरीर पतित हो जाता है। देखो भक्ति के विज्ञान है। तो इसी प्रकार भगवान के चिंतन से ये जो अष्ट सात्विक जो विकार हैं, जो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं क्या है? पहला है स्तंभ, अश्रु, पुलक, रोमांस, हृदय, कंठ अवरोध, वैवर्ण, और लास्ट में है क्या है? विकार। तो लास्ट जो भाव है अष्टसतिक भाव में वो सिर्फ राधा रानी व गोपियों के पास हो सकती है, अन्य के पास नहीं हो सकता। परंतु अन्य जो सात भाव हैं तो ये भक्ति अभ्यास करने से जितने हम आगे बढ़ेंगे तो ये भाव की दशा संचरित होता है, स्तंभित हो जाना। तो ये भाव को तीन रूप में रूप गोस्वामी पाद ने इसको विभक्त किए हैं। एक होता है आर्द्र भाव, जो दैन्यता आने पर वो होता है, और दूसरा होता है कभी दग्ध भाव, और तीसरा होता है शुष्क भाव। जो भक्त नहीं है, ये जो अष्टसात्विक भाव जो प्रभुपाद एक्सप्लेन किए हैं कि भक्ति करने से उत्पन्न होता है, परंतु जो देखावा करता है तो उसके शुष्क भाव होता है। कभी कभी मंदिर में हम देखते हैं तो भावुक होकर के नाचते हैं, ये अच्छा गुण है, ऐसा नहीं कि भाव दशा को प्राप्त कर लिया है। इसको कहते ज्वलन भाव, उसको जला, कुछ लग गया, आग लगा उसके अंदर, कुछ लगा, अब ज्वलन भाव कहते हैं। जैसे प्रभुपाद द्वारा दे रहे हैं कि हम लोग गोल होकर के नृत्य जब करते हैं तो उस समय भक्ति के भाव भी लग जाते हैं, आग लगता है, ज्वलन। परंतु ये जो आर्द्र और दग्ध है ये ओरिजिनली भाव है। जैसे राधारानी एक बार कुमुद कुंद फूल से माला बना रही थी, भगवान की मधुर बंसी की ध्वनि सुनकर के तुरंत उनके हाथ से माला गिर गई और तुरंत वो दौड़ पड़ी। आर्द्र भाव के उदाहरण रूप गोस्वामी पाद देते हैं कि माता जसोदा ने जब स्वप्न में देखी कि फितना राक्षसी पड़ी है बाहर, तो कृष्ण को अन्वेषण करने के लिए नींद से उठ करके भागने लगी। जब कृष्ण वहां पर हैं, सोए हैं, यह दग्ध भाव कृष्ण को बचाने के लिए। लेकिन ये अष्टसात्विक भाव की अलग अलग प्रकार के वर्णन करते हैं कि एक बार गर्गाचार्य ने जब नंद बाबा के आंगन आए थे तो उस समय ग्वाल बाल ने आकर के कहे कि आज भगवान कृष्ण ने बकासुर को वध कर दिए हैं। तो गर्गाचार्य सुनते ही उनके आंख से आंसू बहने लगा और उनके हाथ कांपने लगा, हृदय गदगद हो गए। ये भाव की का विकार है, प्रकाश होता है। और एक उदाहरण दे रहे हैं कि जो अष्टसात्विक भाव कैसे कैसे प्रकट होता है, कैसे इसको उद्दीपना कहते हैं। कृष्ण के किसी प्रसंग सुनने पर उद्दीपना उत्पन्न होता है। जैसे ब्रजवासी जब देखे कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिए तो सबके रोंगटे खड़ा हो गया। अरे ये क्या हो गया, इतनी छोटी बालक, इतने बड़े पहाड़। जब इंद्र को यह बात पता चला कि मैं 7 दिन बारिश करके भी ब्रजवासी को नहीं डुबा पाया और एक छोटा सी बालक ने उठा लिया, हो ना हो वही मेरी प्रभु है, तो शर्म की मारे उनके मुंह क्या हो गया, विवर्ण हो गया, रंग चेंज हो गया। जब अक्रूर जी कृष्ण को लेकर चल गए तो गोपियों ने विरह दशा में उनके सारे उनके जो अंग क्रांति था वो सब परिवर्तन हो गया। तो नारद जी जब ब्रज आए, देखे ये क्या है, मैं कहां आ गया, स्वतः देवता नहीं आ गया, ये सब सफेद सफेद दिख रहे हैं, उनका आश्चर्य हुआ। एक बार राधारानी अपने देखे कि शरीर में पूरा फसना फसना हो गया, तो कहा कि आज सूर्य क्यों इतना तपा रहे हैं। तो एक गोपी ने आकर के कहती है, अरे क्यों आप सूर्य को कोसते हो, क्योंकि तो अभी सूर्यदेव तो है नहीं, छाया है, असुंदर समीर बह रहा है, ये तो आपकी अंदर जो रेंगड़ा खड़ा हुआ है वो तो कुछ दूसरे लक्षण है, क्योंकि उस भाव दशा में तन्मय है। ऐसे अष्टसतिक भाव भी श्रीमद् भागवत में मिलता है। एक जो ध्रुव महाराज जो भगवान के चिंतन में इतने तल्लीन हो गए, आप जानते हैं ना 6 महीना में उन्होंने भगवान के दर्शन किए, जैसे जैसे उन्होंने योग अभ्यास किए, सूखा पत्ता और फल, सूखा बेर, पहले बेर फल फिर पत्ता फिर जल फिर हवा, फिर 5वां महीना में सारे हवा को रोक ले, तो 6वां महीना में जब भगवान को दर्शन अपने हृदय में किए और फिर कुछ समय के बाद भगवान उनके सामने प्रकट हो गए और भगवान के सुंदर स्वरूप को देखकर के ध्रुव महाराज की पूरा अष्टसात्विक भाव उत्पन्न हुआ और उन्होंने भगवान की स्तुति तक भी नहीं कर पाए, उनके हाथ पर एकदम ऐसे सीधा रह गया। तो भगवान ध्रुव की इस हालत देखकर के उन्हें तुरंत अपने वेदमय शंखों को उनके शरीर में स्पर्श करते ही ध्रुव महाराज अपनी स्तुति शुरू करती है। ज्वंत प्रविष्ट मम वाच इमं प्रसुप्तम संजीवयतिम अखिल शक्ति धरा स्वधामना अन्यश्च हस्तचरण श्रवण तुकादीन प्राणान् नमः भगवते पुरुषाय तुभ्यम। खुद अनुभव किए कि भगवान की स्पर्श प्राप्त करते ही उनके सारे अंग में और अष्टसात्विक भाव विकार हो गए। और एक उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में, जब रुक्मणी जी भगवान के साथ हास परिहास हो रहा था, ठाकुर जी कह रहे थे देखो मैं तो कितना बड़े कायर हूं, आप कैसे मेरे हाथ पकड़ लिए, मैं इससे कैसे विवाह कर लिए, देखो जरासंध के भय से मैं समुद्र के अंदर ही छिपा करके मैं रह रहा हूं। तो शिशुपाल आदि बड़े बड़े राजा थे, सब वीर थे और सब धनी व्यक्ति थे, आप उनसे क्यों शादी नहीं किए, आप बहुत बड़ा गलत कर दिए, अभी भी समय है, आपका कुछ बिगड़ा नहीं है, आप जाकर के उनसे शादी कर सकते हैं। तो भगवान परिहास में रुक्मणी जी को बोल रहे हैं। तो रुक्मणी जी भगवान के वियोग से उनका ऐसी दशा हुआ, हाथ पर चला नहीं, अपने पहले तो अपने उंगली से मिट्टी को क्रोधने लगे, फिर उनके शरीर इतने स्तंभित हो गया, आंख पूरा आंसुओं से भर गया। तो जब गिरने जा रहे थे भगवान तुरंत और दोनों हाथ पकड़ करके उसको बचा ले। ये अष्टसाती के भाव। और रूप गोस्वामी पाद और एक उदाहरण देते हैं कि एक ग्वाल बाल भोजन करने के लिए बैठा था, तो उस समय कृष्ण वंशी की जो चोर छोड़ दी, तो ये सुनते ही वो बालक ने दौड़ने लगा, लेकिन जो बंसी की सुंदर ध्वनि जो है इसको इतनी आकृष्ट कर लिया तो वो आगे फिर चल नहीं पाए, रुक गए, उनका दौड़ना रुक गए, तो जंगा फड़कने लगा। ठाकुर जी स्वयं उनके सामने खड़े हैं लेकिन उनको उनका दर्शन नहीं होता है कि उनके सामने मयूर पुच्छे हैं वह भगवान के श्याम सुंदर रूप में है, और हाथ में जो फूल लेके गए थे भगवान को अर्पित करने के लिए स्तंभाकार हो गया, सारे फूल हाथ से गिर गए। तो ये जो भक्ति की जो विज्ञान है जिसको अभ्यास करने पर भाव उत्पन्न होता है, तो ये भाव भरत महाराज को प्राप्त हुआ था, परंतु जो महाभाव है, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरन, तो ये जो महाभाव है शरीर जो वैवर्ण हो जाना विकार होना, ये सबकी बस में नहीं है, ये सिर्फ राधा रानी के पास है। जो चैतन्य महाप्रभु इस भाव को स्वीकार करके जगन्नाथपुरी में प्रदर्शित किए, समुद्र को देखकर के जब जमुना सोचकर उन्होंने छलांग मार दिए, जब वह स्वरूप दामोदर रामानंद राय इस वो उनको ढूंढ रहे थे तो भगवान को कहां प्राप्त किए, एक मछुआर के जाल में। और ये मछुआर चैतन्य महाप्रभु के इसी रूप को देखकर कि इतने डर गया था कि भूत भूत मुझे भूत पकड़ा है, तो ऐसे दौड़ रहा है, तो स्वरूप दामोदर सोचे कि अरे ये क्या हो गया इसको, स्वरूप दामोदर तो बहुत अभिज्ञ थे, कहे कि कौन सा भूत पकड़ा है, तो मेरे जाल में एक भूत फंसा है। तो स्वरूप दामोदर कहते हैं कोई बात नहीं है, मैं इस भूत को निकाल दूंगा, मैं ओझा हूं, मैं जानता हूं कैसे निकालना है। तो स्वरूप दामोदर एक चाप थापड़ मारे उसके गाल पर, तो भूत भाग गया, कहे चलो उस कौन भूत फंसा है आपका जाल में, तो उसको लेके कह देखे कि महाप्रभु कैसे भाव है, पूरा मतलब हड्डी नहीं है, ऐसे ये है भगवान के सारे। तो स्वरूप दामोदर सोचे कि ये जो महाभाव है, इस महाभाव को फिर बहिर्मुख करने के लिए क्या चाहिए, भक्तों को बुला करके कीर्तन करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर महाप्रभु इस प्रकार कीर्तन में फिर अपने बाह्य दशा को आके, तो इस प्रकार जो भरत महाराज की शरीर में ये जो भाव दशा उत्पन्न हुआ, अष्ट सात्विक जो विकार हुआ, ये भगवान श्री कृष्ण के लाल लाल चरण कमल के अनुध्यान करने से इस भाव में प्रवृत्त हो गए। फिर भी ऐसे भाव को प्राप्त करके भी भरत महाराज एक हिरण के प्रति आसक्त हो गए। ध्यान रखिए, इस विषय को हम क्यों चर्चा कर रहे हैं कि संसार के जो आकर्षण है कितने शक्तिशाली है, दुरत्त या कभी पार नहीं कर सकते। एकमात्र भगवान की करुणा को प्रार्थना करना चाहिए, चाहे मंगल आरती हो, बा दर्शन आरती हो, बा गुरु पूजा हो, प्रार्थना के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्रसंग को बार बार सुनने पर एक साधक की मन उसी भक्ति में दृढ़ होता है। कौन सा भक्ति? आत्मनिवेदनम। भरत महाराज वही सोचे, इतने सुंदर पत्र भी मुझे आकर्षित नहीं कर पाई, मेरी साम्राज्य धन वैभव परिजन स्वजन कोई मुझे आकर्षित नहीं कर पाया। एक सामान्य हिरण जो हमारे जाति की भी नहीं है, कुल की नहीं है, उस शरीर की नहीं है, उस हिरण के प्रति में कैसे आसक्त हो गया। ऐसे शोक करते करते फिर उनकी स्मृति आया। भगवत भक्ति कभी नष्ट नहीं होता है, परंतु भगवत भक्ति हमको कभी कभी लेसन कुछ देता है हमारा अनर्थ के कारण। तो फिर वो सिरन शरीर में वो आकर के वही फुलवा आश्रम पर भागवत कथा श्रवण किए, और आखिरी समय में उन्होंने उस गंडू की नदी में अपने शरीर को आधार रख करके, जब अंतिम समय आ गया, भगवान जनार्दन के स्मरण करके, भगवान के नाम को उच्चारण करके वहीं पर शरीर समाप्त किए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही शिक्षा हमको भागवतम से मिलता है, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ डाइंग। तो इस लिविंग का आर्ट हम सीखना चाहिए, कैसे हम जीवन जिए भगवान को लेकर। तो ये प्रबंध था। समय तो हो चुका है, यदि किसकी कोई एक प्रश्न हो सके तो पूछ सकते। किसकी कोई है कोई प्रश्न?
उधर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या करना चाहिए?
लेकिन उनका एक गलती हो गया था कि हम जब जैसे आश्रम में रहते हैं ना, तो भरत महाराज अकेला रहते थे, इसलिए उनके जो भी कुछ किए हैं वो गलत हो गया। कोई साथ में रहता तो कोई बताता है कि महाराज जी आप तो किए, बच्चा को उद्धार किए, लेकिन इतने अटैच नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट इज द कॉज ऑफ बंडेज। रक्षा करना तो अवश्य है, लेकिन कौन सा रक्षा? शरीर की रक्षा नहीं है। इसको भगवान कहते सुरबोध, मैं सबकी हितैषी हूं, तो फिर भगवान क्यों मृत्यु में डालते हैं? पांडव को क्यों इतनी विपत्ति में डाले? भगवान श्रोध है, सबको रक्षा करते, लेकिन उसकी चेतना को रक्षा करते। लेकिन भरत महाराज ज्ञान में विज्ञान होने पर भी वो अज्ञानी जैसे काम किए। पालन पोषण करना तो ठीक है, लेकिन जब घास खाने के लिए आता था हिरण, तो उसको सोचना कि ये ऋषि पुत्र है, देखो इसकी कितनी कोमल स्वभाव है, मैं जब डांट देता हूं तो चुप से बैठ जाता है, ऐसा किसकी लगाव होता है क्या? घर में भी देखो, पिता माता का यदि बच्चा बहुत शांत होता है, नम्र होता है, तो पिता माता बहुत खुश होते हैं। वो ऐसा अपने बच्चों को छोड़ के आ गए, और हिरण जब चुप से बैठ जाता था, कहता कितनी सुंदर है लड़का, ये तो ऋषि पुत्र जैसे लग रहा है। तो ऐसा हंसते होते उनका मन भगवान के चिंतन में नहीं लगा, किस में लगा? हिरण के चिंतन। आप क्या कर्म करते हैं वो कुछ बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका मन कहां पर है? साधन करो, भजन करो, मरते पहले जान, अंतिम समय में टेस्ट हो जाएगा। तो वही अंत काल चमा में बस स्मरण मुक्त। तो अंत समय में क्या टेस्ट हुआ? स्मरण हुआ हिरण। तो गलती हुआ कि सही हुआ बताओ? नहीं, अब जब फाइनल उनका क्या हुआ टेस्ट? गलत हुआ ना, परीक्षा में फेल हो गया ना, तब बताओ। आप निर्णय लो कितना तक हवा की गति है, नौका ले सकते हैं। गुरु कृष्ण की कृपा जब तक है तब तक जाना चाहिए, जो हमको आज्ञा दिए हैं तभी तक। अपने मन को ही गुरु मानने से सब कुछ खतरा हो सकता है, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये लिमिट है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, सुंदर क्लास के लिए धन्यवाद। तो मेरा एक छोटा सा जिज्ञासा है कि जो सौभरी मुनि जी
आगे बोलो,
पानी के अंदर जमुना में वो योग सिद्धि कर रहे थे, परंतु जब
तपस्या कर रहे थे,
तपस्या कर रहे थे, वो मानधाता के जो 50 कन्याओं से विवाह किए हैं, तो आपने आपको जो मतलब विस्तार किए 50 रूप में, और हमारे जो अष्ट सिद्धियां हैं अणिमा लघिमा प्राप्ति सिद्धि ये सब है, तो वो जो एक्सपेंशन किया आपने का जो अपने को विस्तार किए वो कौन सा सिद्धि में आता है?
प्राकम्य काम वासना आता है, प्राकम्य दोनों काम वासना को प्रति करना। और बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमत पूछना है, बाद में पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौरताय राधारास प्यालिता विशाखा सीताराम लक्ष्मण हनुमान जीव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि वो।